न्यूज चैनल के जरिए विजय और दामिनी की मौत की खबर सबके पास पहुंच चुकी थी। किसी और को इस बात पर शक हो या ना हो, पर राजवीर शर्मा समझ गया था कि विजय और दामिनी की मौत के पीछे आहान का ही हाथ है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो बस अपना अगला कदम उठाने की फिराक में था। दूसरी तरफ, सारी फॉर्मैलिटी पूरी करने के एक दिन बाद विजय की डेड बॉडी को ओबेरॉय मेंशन में पहुंचाया गया। वहां दामिनी की डेड बॉडी भी उसी के साथ थी। लोगों को दिखाने के लिए शिवानी, आयुष, आहान और चाहत ओबेरॉय मेंशन में उनकी अंतिम क्रियाएं करने के लिए गए हुए थे। सुबह से ही लोगों का आना जाना लगा हुआ था। चाहत भी काफी देर से शिवानी के पास बैठी हुई थी। शिवानी ने चाहत से कहा, तुम चाहो तो आराम करने के लिए अंदर जा सकती हो, लोगों को दिखाने के लिए यहां बैठने की जरूरत नहीं है। तुम प्रेग्नेंट हो, परेशान हो गई होगी। हाँ, दिक्कत तो हो रही है, पर थोड़ी देर की बात है मॉम। कुछ ही देर में इनका फ्यूनरल हो जाएगा, फिर मैं आराम कर लूंगी। मुझे ठीक लग रहा है, जब ठीक नहीं लगेगा तो अंदर चली जाऊंगी, चाहत ने धीमी आवाज में जवाब दिया। विजय ओबेरॉय के कोई खास रिश्तेदार नहीं थे। जो भी आए हुए थे उन्हें भी विजय की मौत का फर्क नहीं पड़ रहा था। अंतिम दर्शन के बाद विजय और दामिनी को चलाने के लिए शमशान घाट ले जाया जा रहा था। आहान और आयुष के चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल सीरियस थे। चाहत शिवानी को संभाल रही थी। अपने पिता को अग्नि देने के बाद आहान आयुष के साथ वहां खड़ा हुआ था। तभी राजवीर उसके पास आया। उसने दामिनी और विजय की जलती हुई लाश को देखकर धीरे से कहा, वैसे काफी आसानी से तुमने अपने रास्ते के कांटे को हटा दिया है। पुलिस से सेटलमेंट कर लिया है या मैं बात करवाऊं? सबको अपनी तरह समझा है क्या राजवीर शर्मा? आहान ने उसकी तरफ देखकर कहा, जिस काम के लिए आए हो वो करो और निकलो यहां से। अच्छा, धमकी दे रहे हो तुम मुझे? चलो नहीं जा रहा, बताओ क्या करोगे? राजवीर ने भौहें उठाकर कहा। वो जानबूझकर आहान को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था, ताकि सबके सामने वो कोई सीन क्रिएट करे और लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाए। तनु और श्रद्धा भी वहां शिवानी के पास खड़ी हुई थी। उन्होंने महसूस किया कि आहान काफी देर से एक अनजान शख्स से बात कर रहा था। आहान के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर तनु ने मन ही मन कहा, ऐसा भी क्या बोल रहा है यह आदमी जिसकी वजह से आहान को गुस्सा आ रहा है? ओ गॉड, नहीं प्लीज आहान, इस वक्त कुछ मत करना। आहान को देखकर तनु परेशान हो गई थी। तो वहीं ऐसा ही कुछ चाहत के मन में चल रहा था। उसने शिवानी से पूछा, वो आदमी कौन है जो आहान से बात कर रहा है? मुझे काफी अजीब लग रहा है, उसके फेस पर स्माइल है, ऐसे मौके पर मुस्कुराता कौन है? अजीब तो मुझे भी लग रहा है, क्योंकि ये विजय का दोस्त था। जो भी हो, आहान को ज्यादा देर तक इससे बात नहीं करनी चाहिए, शिवानी ने जवाब दिया। ऐसे मौके पर वो आहान को जाकर रोक भी नहीं सकते थे। राजवीर लगातार आहान को इंस्टिगेट कर रहा था। उसने आगे कहा, बोलो आहान ओबेरॉय, क्या करोगे? मैं ऐसे ही तुम्हारे रास्ते में आता रहूंगा, तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता रहूंगा, क्या करोगे तुम मेरे साथ? अपने सामने देखो, सब समझ आ जाएगा क्या करूंगा, आहान ने चैलेंजिंग वॉइस में कहा और फिर सामने की तरफ इशारा किया। राजवीर ने सामने देखा तो विजय और दामिनी की जलती हुई चिता उसे दिखाई दी। आहान की बातों ने कन्फर्म कर दिया था कि उसी ने उन्हें मारा है। राजवीर आगे कुछ कहता उससे पहले आहान दूसरी तरफ चला गया। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया खत्म होने के बाद सभी उन्हें सांत्वना देकर वहां से अपने घर को लौटने लगे। राजवीर अभी भी वहीं पर था। अब वहां आहान की फैमिली और राजवीर के अलावा और कोई नहीं बचता। सबके जाने के बाद राजवीर आहान के पास आया तो उसकी नजर चाहत पर पड़ी। राजवीर अचानक जोर से हंसते हुए बोला, तुमने पहले मुझे बताया क्यों नहीं तुम बाप बनने वाले हो? वैसे काफी प्यारी है तुम्हारी पत्नी। पत्नी तो नहीं कह सकता, क्योंकि शादी नहीं हुई है ना तुम दोनों की। आहान अब तक अपने गुस्से को काबू में किए हुए था, लेकिन अब वहां ऐसा कोई नहीं था जिसके सामने उसे दिखावा करना पड़े। आहान ने गुस्से में राजवीर का कॉलर पकड़ा और पंच दिखाते हुए चिल्लाकर बोला, अपनी हद में रहो राजवीर शर्मा, मैं वो 8 साल का बच्चा नहीं हूं जिसे तुम अपनी उंगलियों पर नचा सकते हो। ऐसा हाल करूंगा कि अफसोस मनाने तक का भी मौका नहीं मिलेगा। अरे अरे रे, मैं तो डर गया, राजवीर घबराहट के साथ बोला और फिर हंसने लगा। वो आगे बोला, पर तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं है, तो तुम्हें क्या पता मैं तुम्हारे साथ क्या किया है? अफसोस होता है तुम पर आहान ओबेरॉय, काश तुम्हें सब याद आ जाता और फिर इस खेल को खेलने में ज्यादा मजा आता। आहान ने राजवीर को छोड़ दिया। राजवीर वहां से जाने को हुआ तभी उसकी नजर वापस से चाहत पर गई। वो चाहत के पास गया और उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम मेरी बेटी की उम्र की हो, एक गलत इंसान के साथ रह रही हो, खामियाजा तो तुम्हें भी उठाना पड़ेगा। राजवीर की तरफ देखकर अचानक चाहत को काफी अजीब सा महसूस हुआ। राजवीर उससे अलग हुआ और चला गया। उसके जाते ही चाहत ने आहान से पूछा, कौन था वो आदमी और इतनी अजीब बातें क्यों कर रहा था? मुझे उससे बहुत नेगेटिव वाइब आ रही है आहान, वो हमें चोट तो नहीं पहुंचाएगा ना? मेरे होते हुए हमें कोई चोट नहीं पहुंचा सकता है, आहान ने जवाब दिया। चाहत को परेशान देखकर आहान बोला, अब ज्यादा मत सोचो, तुम काफी थक गई हो, तो घर चलते हैं, वैसे भी शाम को हमें डॉक्टर के पास जाना है। चाहत ने उसकी बात पर हामी भरी। आहान अपने विला जाने के बजाय उन सबके साथ ओबेरॉय मेंशन जा रहा था, आखिर लोगों को दिखाना जो था कि उन लोगों के बीच सब कुछ सही है। आहान गाड़ी ड्राइव कर रहा था और चाहत उसके पास बैठी थी। आयुष और शिवानी दूसरी गाड़ी में आ रहे थे। जब से चाहत ने राजवीर को देखा था, उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। चाहत ने अपने मन में कहा, न जाने क्यों मुझे वो इंसान जाना पहचाना सा लग रहा था। जब से उससे मिली हूँ, तब से दिल में डर सा बैठ गया है। मुझे आहान से कहना होगा कि वो उस शख्स से दूर रहे। गाड़ी ड्राइव करते हुए आहान ने चाहत के चेहरे की तरफ देखा, वो काफी परेशान लग रही थी। आहान ने चाहत के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। राजवीर शर्मा एक अच्छा आदमी नहीं है, मुझे पूरी बातें याद नहीं है, लेकिन मेरे बचपन को बर्बाद करने में या मैं आज जैसा भी हूँ, उस सब के पीछे विजय ओबेरॉय के साथ उस शख्स का भी हाथ था। क्या उस आदमी का नाम राजवीर शर्मा है? चाहत ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, लेकिन तुम इतना सरप्राइज क्यों हो रही हो? जानती हो उसे पहले से? आहान ने चाहत से पूछा, जिस पर उसने तुरंत नामे सिर हिला दिया। चाहत ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने मन ही मन कहा, नहीं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, घबराहट के मारे मैं ज्यादा सोच रही हूँ, वो आदमी मेरा बाप कैसे हो सकता है? बस नाम ही तो एक जैसा है, पर उसकी आंखों का रंग भी मुझसे मिल रहा था। मुझे उनका चेहरा याद नहीं है, पर मैं उस इंसान का नाम कैसे भूल सकती हूँ जिसने मुझे और मेरी माँ को इतनी तकलीफें दी हैं। चाहत के बचपन की यादें धुंधली हो गई थी, लेकिन उसे अपने बाप का नाम अच्छे से याद था। चाहत इसे अपना भ्रम समझकर भुलाना चाहती थी, जबकि सच्चाई यही थी कि राजवीर शर्मा उसी का पिता था जिसे कभी उससे प्यार नहीं था। आहान चाहत को लेकर घर पहुंच गया था। वहीं दूसरी तरफ राजवीर आहान पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। उसने उसकी कॉलर पकड़ी थी और उसे मारने की धमकी दी थी। घर आते ही राजवीर ने अपने आदमी को कॉल पर कहा, मुझे आहान ओबेरॉय को उसकी औकात दिखानी है, उसका सारा शेड्यूल मुझे बताओ ताकि उसे पता चले कि राजवीर हवा में बातें नहीं करता है। ठीक है सर, सामने से उसके मैनेजर ने जवाब दिया और फिर कॉल कट कर दिया।
राजवीर के सामने बार बार चाहत का चेहरा घूम रहा था। वो गुस्से में चिल्लाकर बोला, तुम भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह निकली, शादी नहीं की और शादी से पहले ही एक आदमी के साथ संबंध बनाए और उसके बच्चे को पैदा करने जा रही हो तुम। शर्माती है ये कहते हुए कि तुम मेरा खून हो चाहत, सबसे पहले तो मुझे तुम्हारी अकल ठिकाने लगानी है। लगता है बचपन में भूल गई थी कि तुम गलती करने पर कैसे तुम्हें सजा मिलती थी, अभी गलती की है तो सजा भुगतनी ही पड़ेगी। चाहत के उसके पापा के साथ कभी भी अच्छा रिश्ता नहीं रहा। उसके दिल में जो थोड़ी बहुत यादें बची थीं वो धुंधली जरूर थीं, लेकिन कड़वी भी थीं। शाम के वक्त चाहत तैयार हो रही थी, उसे आहान के साथ डॉक्टर के पास जाना था। सोने के बाद कुछ पल के लिए भले ही वो राजवीर को भूल गई हो, लेकिन जब वो तैयार हो रही थी तो उसकी आंखों के सामने बार बार राजवीर का चेहरा आ रहा था। न जाने दिल में इतनी घबराहट क्यों हो रही है, जबकि अच्छे से पता है आहान के होते हुए कुछ नहीं हो सकता है। आज डॉक्टर फाइनल डिलीवरी की डेट दे देगी, बस एक हफ्ते की बात है और फिर सब ठीक हो जाएगा चाहत, तब तक थोड़ा खुद को संभाल कर रखो। आहान पहले से ही परेशान है, वो मुझे परेशान देखेंगे तो काम का टेंशन लेंगे, चाहत ने अपने मन में कहा। वो अपने ख्यालों में इतना खोई हुई थी कि उसे एहसास भी नहीं हुआ कब आहान उसके पास आ गया था। चाहत का ध्यान तब टूटा जब आहान ने उसके कंधे पर सर रखकर कान के पास आकर धीरे से कहा, क्या बात है, किसके ख्यालों में खोई हुई हो जबकि मैं तुम्हारे इतने करीब हूँ और तुम्हें एहसास तक नहीं कि मैं अंदर आ गया हूँ। चाहत ने हड़बड़ा पर जवाब में कहा, कुछ नहीं, बस ये सोच रही थी कि पता नहीं डिलीवरी कब और कैसे होगी, पहली बार है सब कुछ तो डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा था तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं और बेवजह की ओवरथिंकिंग मत करो, आहान ने चाहत का कंधा सहलाकर कहा। चाहत ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर आहान के साथ वो डॉक्टर के पास जाने के लिए निकली। जैसे ही वो दोनों गाड़ी में बैठकर कुछ दूर निकली, राजवीर के पास एक कॉल आया। उसके मैनेजर ने कहा, काम हो गया है सर। राजवीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कॉल कट कर दिया। उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। वहीं आहान और चाहत की गाड़ी कुछ दूर पहुंची ही थी कि गाड़ी ने अपना कंट्रोल खो दिया और वो सामने आ रहे एक ट्रक से जाकर टकरा गई थी।